नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर हिज एक्सीलेंसी गोपाल बागले जी अब अपना कार्यकाल समाप्त करके वापस जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को नई ऊंचाइयां तो मिली ही हैं, तो उनसे यही जानना चाहा कि अपने कार्यकाल के दौरान हुई किन उपलब्धियों पर हमारा ध्यान दिलाना चाहेंगे या उनके बारे में बताना चाहेंगे। तो बस अपने सरल स्वभाव के अनुसार ही उनका कहना था।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्रेडिट किसी एक जने का नहीं होता, और सारा टीम वर्क होता है और बहुत चीजें होती हैं जो दोनों देशों की सरकारों में होते हैं, लोग उनके सहयोग से होती हैं। हम तो यहाँ कैनबरा में हैं, दिल्ली में सरकार है, आप लोग हैं यहाँ, डायस्पोरा का इतना बड़ा सहयोग रहता है। लेकिन अगर चार पांच विषयों का मैं उल्लेख कर सकूं तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब मैं आया था तो फरवरी 2024 में, मेरे आने के कुछ ही समय बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया को लोग ज्यादातर समझते हैं पैसिफिक आइलैंड कंट्री है, क्योंकि ईस्ट कोस्ट से सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन वगैरह। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो महत्ता है, जो महत्व है, वो इसलिए भी है कि दूसरी ओर हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन उसे टच करता है। तो पर्थ में ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार, और विदेश मंत्री यहाँ की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हमारे विदेश मंत्री माननीय डॉक्टर जयशंकर जी आए थे जी। तो ये एक इस चीज का संकेत था तक कि हम दोनों के देशों के बीच में सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बहुत बढ़ रहा है। और मेरे समय में जो पिछले कुछ टाइम रहा है, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री वगैरह के अलावा रक्षा मंत्रियों यानी डिफेंस मिनिस्टर्स के लेवल पे कोऑपरेशन बहुत बड़ा है। आपको पता होगा, आपके श्रोताओं को भी पता होगा, पिछले साल पहली बार 12 साल से ज्यादा में पहली बार हमारे रक्षा मंत्री भारत के यहाँ पर आए थे। दूसरा, और ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है दोनों देशों के बीच में, जो हमारी रक्षा सेनाएं हैं उनके बीच में बहुत अच्छा सहयोग बढ़ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं एक दूसरे की सुरक्षा का कारण बने, उसमें सहयोग करें, और हमारे क्षेत्र की, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा में भी हम बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं मिल करके। दूसरा एरिया है शिक्षा का। 5 और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं जिनको अभी अनुमति मिल गई है भारत में अपना कैंपस खोलने की। स्किलिंग यानी कि कौशल के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी में, और अब माइनिंग के क्षेत्र में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत में स्थापित होने जा रहे हैं
जी।
और स्पोर्ट्स एक नया एरिया है जो कि बहुत उभर करके सामने आया है। और स्पेस के क्षेत्र में जॉइंट वेंचर में एक ऑस्ट्रेलिया में सेटेलाइट बन रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसको भारत के रॉकेट पर छोड़ा जाएगा। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। हाँ। और ये प्राइवेट सेक्टर इसमें काम कर रहा है, हमारा काम उसमें खाली फैसिलिटेट करना है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा संतोष मुझे किस बात से है, मुझे सबसे ज्यादा संतोष है डायस्पोरा के साथ भारतीय ओरिजिन, भारतीय उद्गम के जो लोग हैं, भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, उनसे हमारा जो मेलजोल, उनके साथ जो सहयोग बढ़ा है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा संतोष का विषय है।
क्या बात है, आपने बहुत सारे क्षेत्रों के नाम तो ले ही लिए कि किस किस क्षेत्र में हमारे दोनों देशों के बीच में तरक्की हो रही है और कितना योगदान है। क्या कोई ऐसा क्षेत्र अभी भी लगता है जो शायद उतना नहीं बढ़ सका या कुछ अछूता सा रह गया है, जो आप चाहेंगे कि आते दिनों में वो हो सके?
देखिए, विश्व में आप देख रही हैं, दुनिया में स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है ना
जी।
तो उसके चलते हुए ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों बहुवादी देश हैं, बहुलतावादी यानी प्लूरलिस्टिक कंट्रीज हैं, डाइवर्सिटी है, हमारे देशों के बीच में सहयोग कई क्षेत्रों में बढ़ेगा। एक क्षेत्र जिसमें कि और अभी काफी संभावनाएं हैं और प्रयास जारी हैं, वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए ECTA यानी एक्टा एग्रीमेंट हुआ था 2022 में
जी।
उससे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है दोनों डायरेक्शंस में, किसी किसी चीज में, किसी किसी कमोडिटी में 40-50% भी बढ़ा है। तो इसका फायदा दोनों देशों को हुआ। जब सीका हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और उसके लिए प्रयास चल रहे हैं, तो ये और भी लाभकारी होगा दोनों देशों के बिजनेस कम्युनिटीज के लिए
जी। तो ये तो हम उम्मीद रखेंगे ही कि इसी तरह से सहयोग दोनों देशों के बीच में बढ़ता रहेगा और तरक्की ही तरक्की होती रहेगी। यहाँ पर आपसे एक बात ये भी जानना चाहूँगी कि इस दौरान कुछ खट्टी मीठी यादें भी रही होंगी आपके साथ में, और हो सकता है कि कहीं कुछ आपको हैरानी हुई हो कि ये बात अगर हमें पहले पता होती तो बात कुछ और होती, क्या ऐसा कोई वाक्या है?
खट्टी तो नहीं है, मीठी ही है, लेकिन हाँ मजेदार भी है।
जी।
तो एक बात ये थी, जब यहाँ पे आया तो कॉफीज की बहुत वैरायटीज हैं, जिनको आप जाइए ऑर्डर करिए। तो पहले तो पता चला कि एक्स्ट्रा हॉट कहेंगे तभी गर्म कॉफी मिलेगी, तो भारतीयों को वो कॉफी ठंडी लगी। दूसरी चीज लगी कि फ्लैट व्हाइट एक नया नाम सुनाई पड़ा। पहले मैं सोचता था फ्लैट व्हाइट का मतलब है बिछाने वाली चादर, लेकिन ये तो कॉफी का नाम था। तो इस तरह की चीजें जो थी वो बड़ी मन को छू गई और याद भी रही।
जी, क्या बात है। अब इन यादों के साथ में आप जा रहे हैं और नई यादें आप बनाएंगे। बस जाते जाते हमारे लिए, इस पूरे डायस्पोरा के लिए क्या कोई खास संदेश देना चाहेंगे?
संदेश तो मैं नहीं दे सकता, इतना तो मेरे पर्सपेक्टिव इस तरीके का ऐसे मैंने नहीं सोचा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय डायस्पोरा यहाँ पे बहुत जुड़ा हुआ है भारत से। तो मैं बस यही कहूंगा, यही आग्रह करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। बी कनेक्टेड एंड कीप कनेक्टिंग।
बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। चाहती थी कि बहुत सारी बातें कर लूं, लेकिन मुझे मालूम है आपके पास समय की कमी है, तो अभी आज आपने हमारे लिए ये समय निकाला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी, आपको और आपके श्रोताओं को एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं।
जी, और आपके उज्ज्वल भविष्य की भी बहुत सारी ढेर सारी कामनाएं हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।
इस पॉडकास्ट को डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमसे जुड़िए जब आप चाहें, SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर।